ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराश्रमद्भागवतम् की आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद 6। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक कितना है 5। अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। यश्य अंके शिरः आधाय लोकः स्वपिति निवृतः स्वयं धर्मं अधर्मं वा न हि वेद यथा पशु स कथम् न्यर्पित आत्मनं कृता मैत्रं अचेतनं वैश्रम्भणियो भूतानां शग्रुणो दुग्धुम अर्हति। यश्यंके शिराधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मं अधर्मं वा नाहि वेद यथा पशु कथम एक श्लोक है ठीक। यश्यंके शिराधाय लोकः स्वपिति निवृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा नाहि वेद यथा पशु। पढ़िए कृपया। माता जी शब्दानुवाद यश्य जिसके अंके गोद में सिरह सिर अधाय रखकर लोकह आम जनता शपिति सोते हैं निब्रतः शांति से स्वयं स्वयं धर्मम धार्मिक सिद्धांत या जीवन लक्ष्य अधर्मम अधार्मिक सिद्धांत वा अथवा न नहीं ही निसंदेह वेद जानते हैं यथा जिस तरह पशु पशु सा ऐसा व्यक्ति कथम कैसे न्यर्पित आत्मनम उस जीव के प्रति जिसने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया है कृत मैत्रम श्रद्धा तथा मैत्री शेष समन्वित अचेतनम अविकसित चेतना वाला मूर्ख विश्रम्भणीय श्रद्धा का विषय बनने का योग्य भूतानाम जीवों का सघृणा सारे लोगों के कल्याण हेतु मृदु हृदय रखने वाला दुग्धम कष्ट देने के लिए अर्हति समर्थ हैं। अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की सामान्य लोगों का ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा नहीं होता जिससे वे धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके अवोध अप्रवृद्धि नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपनी रक्षा पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। कृपया मेरे बाद में दोहराइए। सामान्य लोगों का ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा नहीं होता जिससे वे धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी का गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपनी रक्षा पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन वन्य योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री से पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। तात्पर्य, संस्कृत में विश्वासघात द्योतित करता है श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाला को। जन समूह अपने को सदैव इसीलिए सुरक्षित अनुभव करता है क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव कितने खेद की बात यह है यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई से डाल दे। इनमें हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे किंतु राजनीतिज्ञों की साठगांठ से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी। यह कलियुग का चिन्ह है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रखता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश ज्यों ही वे तगड़े यानी मोटे हो जाते हैं उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई खाना भेज दिया जाता है। ऐसी क्रूरता की विष्णु दूत जैसे वैष्णव निंदा करते हैं। निसंदेह जिन नारकीय दशाओं का पहले वर्णन हो चुका है वे ऐसी यातना देने वाले पापी पुरुषों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो कोई उस जीव के साथ विश्वासघातक करता है जिसने अच्छे भाव से उसकी शरण ले रखी है, चाहे वह जीव मनुष्य हो या पशु, वह अति पापी है। क्योंकि अब ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडित रखते हैं, इसीलिए पूरा मानव समाज बुरी तरह से दूषित है। इसीलिए इस युग में लोगों को मंदभाग्य उपद्रुता ऐसी पापमयता के फल स्वरूप लोग निंदित होते हैं यानी मंदा। उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती सुमंदमतय, वे अभागे होते हैं मंदभाग्य। अतएव वे अनेक समस्याओं द्वारा सदैव विक्षुब्ध रहते हैं उपद्रुतः। यह तो स्थिति है इस जीवन में और मृत्यु के बाद उन्हें नारकीय दंड दिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्रन्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदाम्बिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवाञ्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललितश्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो मावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय जय श्री श्री राधा श्री ललिता विशाख देवी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की हरे कृष्णा।
सबसे पहले उपस्थित सभी वरिष्ठ भक्तों के चरण में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप में देवकी नंदन प्रभु और सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा दीक्षा करता हूँ कि यथा रूप में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर सकूं, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो और ये यथारूप अनुवाद होने के कारण आप लोगों को भी आनंद प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर विषय है ये अजामिल की उपाख्यान। विशेष रूप में हरिनाम की जसगान किया गया है इसमें। हम लोग तो भागवत का एक एक श्लोक हर दिन पढ़ते हैं और दूसरे दूसरे स्कंद या यही चैप्टर भी क्या होता है, क्या किस प्रसंग में चल रहा है, वो भी नहीं रहता है ज्ञान। तो इसीलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि पूरा इस प्रसंग का उद्देश्य क्या है और क्यों ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और शुरुआत से जो छह स्कंद है इसका शुरुआत होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। और परीक्षित महाराज जब प्रश्न करते हैं उनमें से दूसरा स्कंद से लेकर पांचवा स्कंद तक क्या क्या बताए वो सब याद करते हुए प्रश्न करते हैं। और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन पहला स्कंद में एक भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किए हैं परीक्षित महाराज और सवाल किए हैं तो दूसरा स्कंद जब होता है शुरू तो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन। इससे गीता में भी हम देखते हैं पहला अध्याय कुछ भी भगवान का प्रवचन नहीं है, उसमें बातचीत है लेकिन प्रवचन नहीं है भगवद गीता में। ऐसे ही भागवतम में जब सेकेंड कैंट में आते हैं दूसरा स्कंद में तभी सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन शुरू हुआ है। और पहला स्कंद तो शुद्ध गोस्वामी बताए हैं। और इससे तो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव का ही ध्यान है, मेडिटेशन। तो व्यासदेव पहले कुछ श्लोकों तीन श्लोकों में ध्यान किए हैं भगवान को, परम पुरुष भगवान। तो श्रीमद् भागवतम संपूर्ण रूप में भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं व्यासदेव, और व्यासदेव ध्यान के माध्यम से बता रहे हैं कि शुद्ध गोस्वामी नमिसारण्य में ऋषियों को बता रहे हैं, जो जिनमें कि सोनक ऋषि प्रधान है। तो इनकी संवाद पूरा चलता है पहला स्कंध। जब दूसरा स्कंध होता है तो दूसरा स्कंध आदि में परीक्षित महाराज जो जो सुने हैं ये बता रहे हैं। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं सुन चुका हूं कैसे जीव क्रम विकास होते होते निवृत्ति मार्ग की रास्ता लेकर वो भगवत धाम जाता है भाया देकर ब्रह्मलोक को। तो क्रम विकास सेकंड कैंटो में बताए सुखदेव गोस्वामी कैसे जीव धीरे 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 अपने को क्रम उन्नति करके ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक से जब महाप्रलय होगा तो वैकुंठ जाएगा। तो ये दूसरा स्कंध में मैं सुना हूं। और भी प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से जीव कैसे उपभोग करने के लिए स्वर्ग आदि जाएगा, और तीसरा स्कंध में मैं सुना हूं परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ये सब बताए हैं। और भी सृष्टि क्रिया आदि, और विशेष रूप में स्वयंभव मनु की मनवंतर का वर्णन की मैं सुना हूं। तो जो सुने हैं जो चौथा स्कंद आदि में, तीसरा चौथा, इसमें मनु का ही संसार के बारे में वर्णन है, डायनेस्टी उनका वंशज के बारे में, उत्तानपाद और प्रियव्रत की वंशज, और प्रियव्रत तो स्पेशली पंचम स्कंद में आते हैं। तो ऐसे ये मनु की चरित्र भी सुना हूं, और आप विशेष रूप में पंचम स्कंद में वर्णन किए कि भगवान की सृष्टि के बारे में कैसे अनेक स्थान है, अनेक स्थानों में जीवों को रखे हैं, अनेक स्थानों में भी भगवान का जसगान हो रहा है। तो ये सृष्टि का वर्णन भी सुन चुका हूं, और पंचम स्कंद के अंत में ये नर्क की वर्णन सुना। तो जब नर्क की वर्णन सुने, नर्क तो विशेष रूप में 28 नर्क का वर्णन किए हैं, जैसे तो अनेक है, और नर्क की वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय पिघल गया। वैष्णव वही होते हैं पर दुखे दुखी। तो वो तभी सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति नरक में जा रहा है या जाने वाले हैं, तो उन लोगों का ये नरक यंत्रणा से वो लोग कैसे उद्धार हो सकता है, प्रभु कृपा करके बताइए। तो तभी परीक्षित महाराज, तभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि व्यक्ति को प्रायश्चित करने का आवश्यक है, जो जैसा पाप किया है ऐसे ही प्रायश्चित का आवश्यक है, अगर ऐसा प्रायश्चित नहीं किया है तो उसको दंड भोगना ही है। जो कोई भी हम कार्य करते हैं तो किसी का अंडर में रहकर कार्य करते हैं, एक शासक रहते हैं, तो वो शासक अगर सही सही प्रायश्चित किया हमको तो आगे जाना नहीं पड़ेगा। जैसे यहीं पर शासक कम कंट्रोलर नहीं कर पाता, फैमिली मेंबर या गांव वालों पंचायत सरपंच तो आगे जाता है बड़ा कोर्ट को, ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट को जाता है, तो ये सभी कोर्ट जब फेल मार जाता है, पक्का प्रायश्चित नहीं हुआ है, बराबर प्रायश्चित नहीं हुआ है, तो अंतिम में है जमदूतों, वो छोड़ने वाले नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जैसे पाप है ऐसे ही प्रायश्चित उसको करना है, अगर नहीं किया है तो उसको जम जम यंत्रणा भोगना है और नरक भोगना है। जैसे मनुसंहिता आदि ग्रंथों में ये प्रायश्चित की विधान बता गया है। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि कोई ब्रह्म हत्या दोष था तो इंद्र को उससे मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए ब्राह्मणों ने, तो इसे अनेक प्रायश्चित है। और मनुसंहिता आदि तो कहते हैं कि अगर कोई किसी को मर्डर कर दिया तो
उसका सही प्रायश्चित है वो उसको फंसी डाल मार डालना राजा का दंड, तो बराबर हो गया। लेकिन बराबर नहीं हुआ है तो हेलिस प्लैनेट नर्क यंत्रणा भोगना है। सुखदेव गोस्वामी का ये उत्तर से परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक जानते थे कि प्रायश्चित जो कर रहे हैं वो हो रहा है कि अभी बराबर भी प्रायश्चित क्यों ना करे कि उसका पूर्ण रूप में पाप करने की मनोवृत्ति खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो प्रश्न करते हैं, दृष्टा श्रोतव्यम यथ पापम जानन अपि आत्मन अहितम करोति भूय विवश प्रायश्चितम अथो कथम। इसको मैं प्रायश्चित कैसे समझूं? और देख दृष्ट श्रोतव्यम देख रहा है सुन रहा है और ये पाप काम जान रहा है, जानते हुए भी विवश होकर के फिर पाप काम में लग रहा है। जैसे अर्जुन भी गीता में कहे हैं कि बलपूर्वक उसको कौन सा ऐसा शक्ति है खींच करके लगा रहा है पाप पूर्ण कार्य में, विवश होकर कैसे युक्त होता है। तो ये सभी के लिए है जो वास्तविक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया है, आत्मानुभूति नहीं किया है, तो उनको छोड़ करके हम सभी का अवस्था है कि इसे विवश होकर के पाप कार्य करना। और भी कहते हैं कचित निवर्तते अवद्रात कचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित मतो अपार्थम मन्य कुंजर सूचवत। ये तो हाथी स्नान जैसा है, हाथी अच्छा से स्नान करता है सुंड में पानी ले ले करके फुफकार मारते हुए बहुत सुंदर से सुंद, जैसा स्प्रे मशीन में सफाई करना जैसा, लेकिन जैसे ही निकल आता है तो फिर धूल को लेकर के शरीर में डाल देता। तो ऐसे ही जैसे बड़ा बड़ा प्रायश्चित भी क्यों ना करे और वही पाप खत्म भी क्यों ना हो जाए फिर वो ऐसा ही पाप करेगा जानते हुए भी। तो ऐसे प्रायश्चित को मैं कैसे समझूंगा ये सही प्रायश्चित है? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न। ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी और सुंदर उत्तर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये पक्का प्रायश्चित नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि कोई सकाम कर्म के द्वारा दूसरे पाप काम किए की प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये बताते हैं, पहले बताए थे प्रायश्चित होता है लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम में बता नहीं हो सकता। अभी कहते हैं तो असली प्रायश्चित है प्रायश्चितम विमर्शन। तो सही जब आत्मा ज्ञान उसको प्राप्त होता है, सही ज्ञान जब प्राप्त होता है तो तभी उसका प्रायश्चित होता है। और अविद्या जब तक उसको छाया है, उसको कवर करके रखा है, वो व्यक्ति का प्रायश्चित नहीं हुआ है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे तो वो प्रोसीजर भी बताते हैं, वो उपाय कहते हैं तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। जो ज्ञान मार्ग हम लोग सुने हैं तो इसका विशेष वर्णन करते हैं, देह वाक बुद्धि। तो ये शरीर मन बुद्धि से अगर काय मन वाक्य से अगर भगवान की ये भगवत विज्ञान समझने के लिए तपस्या आदि व्रत जो कठिनाई उपाय है उस सब को वॉलेंट्रीली अपना स्वेच्छा से अगर स्वीकार करते हुए वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेगा तो उसका कलमश नष्ट हो जाएगा। तो शरीर काय मन वाक्य में जितना भी पाप किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? वेणु गुलमा इवानला। जैसे जंगल में कभी कभी आग लग जाता है तो जितना बांस रहता है सभी बांस जल जाता है, एक भी बांस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और देखेंगे क्या राख ही काला काला बन गया होगा। तो बांस है उधर, बिल्कुल नहीं बांस, लेकिन जैसे ही बारिश होगा, बारिश होने के बाद बांस निकल उठेगा। तो ये क्या समूल ध्वंस हुआ? नहीं। तो ये प्रोसीजर अभी वास्तविक पूरा क्लीन प्रोसीजर नहीं है उपाय, क्योंकि नीचे जड़ रहता है, जड़ को आग नहीं जलाया है, मिट्टी के नीचे है, जब बारिश आया तो नया पेड़ उगने लगा। तो तभी फिर नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, परीक्षित महाराज को पूछना नहीं पड़ा, सुखदेव कोई गुरु जी गुरु आचार्य वरिष्ठ भक्त तो हमेशा चाहते हैं अपना अधीन व्यक्ति को सबसे बड़ा वस्तु देने के लिए, तो ये उत्तम स्तर की प्रायश्चित भी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुनंति कार्षिणा निहारमी भास्कर। कुछ लोग ये उपाय अवलंबन करते हैं, केचित ज्यादा लोग नहीं। तो ये प्रायश्चित कैसा है, जैसे कुहरा कभी कभी अंधकार कर देता है, लेकिन सूर्य उदय होता है, जैसे ही सूर्य उदय होगा तो कुहरा नष्ट होने लगता है, थोड़े समय में बिल्कुल नहीं कुहरा देखने के लिए मिलेगा, हर जगह आप स्पष्ट देख सकते। तो ऐसे ही भगवत भक्ति केवल या भक्तिया सिंपली भगवान की प्रेममयी सेवा, ये सभी प्रकार पापों के लिए प्रायश्चित है, और इससे दोबारा उसका नहीं होगा पाप। इसे कोहरा फिर नहीं होता है, जब तक सूर्य है तो कोहरा आ सकता है, सुबह में ही रहता है ना सूर्य की रोशनी। तो ये उदाहरण दिए हैं, और ये भक्ति योग की विशेष भी वर्णन किए हैं। तो कैसे ये है, कैसे हम लोग शुद्ध हो सकते हैं, तो तभी कहते हैं तो जितना ये तपस्या आदि मार्ग के द्वारा व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता है, अपना जीवन जो प्रायश्चित भी एक जन्म का होता है प्रायश्चित, और ये एक पाप के लिए, लेकिन अनेक अनेक जन्मों के प्रायश्चित तुरंत हो जाता है भगवान की भक्ति से। तो ये कहते हैं कि न तथा ही भगवान राजन पुए तपाधि जथा कृष्ण अर्पिता प्राणा तत् पुरुष निचे वया। जो भगवान कृष्ण की चरण में समर्पित भक्तों हैं, ऐसे महान भक्त आचार्य की सेवा में अगर पूर्ण रूप में निजुक्त हो जाता है तो वही व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो तपस्या आदि व्रत करते हुए व्यक्ति ऐसा शुद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। तो यही शिक्षा जो हम लोग हर दिन पढ़ते हैं, जैसे संसार दावानल भी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ये सभी संसार की दुख से हम मुक्त हो सकते हैं, और श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति शब्द सदमा। तो यही वास्तव में सबसे सरल और उत्तम उपाय है, सदगुरु की चरणारविंद सेवन, आचार्यों की सेवा करना, तुरंत पवित्र हो जाता है व्यक्ति। तो तभी कहते हैं सुदृचना ही अयम लोके पंथ क्षेम कुतो भय सुशीला साधव यत्र नारायण परायण। जो भगवान के चरण में समर्पित भक्तों हैं, वो लोग जैसे जिस पथ में चलते हैं, मतलब भक्ति जो अनन्य भक्ति, तो इससे अलावा और दूसरा अच्छा उपाय नहीं है प्रायश्चित करने का, ये सबसे उन्नत प्रायश्चित कहते हैं। और तभी कहते हैं सकृत मना कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद गुण राग जयरिह नाते यमं पाश भृतश्च तद्भट्टान सपने अपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। तो जो व्यक्ति, प्रभुपद उसका अनुवाद में लिखते हैं, पूर्ण रूप में शरणागत नहीं भी हुआ है, लेकिन ओ भगवान की शरण में आए, शरण और पूर्ण रूप में शरण अलग है, फुल्ली सरेंडर जो गीता में भगवान कहे हैं, तो ऐसा फुल्ली नहीं हुआ है लेकिन शरणागत हुआ है, प्रभु मुझे बचाइए आप, इतना तो बोला है एक बार भी सकृत। और उसका मन भगवान की रूप गुण लीला इसमें अगर थोड़ा भी आकर्षित हो गया है तो ये आकर्षित हुआ है और भगवान की चरण में एक बार भी शरण लिया है, तो ऐसे व्यक्ति अपना सपने में भी कभी जमदूत नहीं देखेगा, मतलब उतना उसका सपने में भी जमदूत उपस्थित नहीं हो सकते हैं डर के मारे। ये सुखदेव गोस्वामी ये बात जब बताए तो इस बात को प्रमाण देने के लिए अभी अजामिल का उपाख्यान कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान की लीला रूप गुण इसमें आकर्षित हुआ है और शरणापन हुआ है, थोड़ा शरणापन एक बार बोला है प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, तो ऐसे व्यक्ति का सभी प्रायश्चित हो गया है, जमदूत तो सपने भी नहीं आएंगे। तो तभी इसका प्रमाण देने के लिए अजामिल का उपाख्यान शुरू करते हैं। और ये समझना है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महर्षि लोग ये उदाहरण देते हैं, जो कन्याकुब्जा नामक स्थान है जहां पर अजामिल नामक एक ब्राह्मण था जो कि दासी का पति था। तो इसे ये अजामिल का चरित्र तो सब सुने हैं, तो संक्षेप में बता देता हूं। तो इसमें कहते हैं कि जाम दूतों और विष्णु दूतों की जो संवाद आता है तो ये संवाद रूपक आख्यान है ये, और इसमें इसका प्रमाण होता है। और अजामिल तो इसे ही वेश्या की संगति के कारण सभी प्रकार ब्राह्मण होते हुए भी वेश्या की संगति के कारण सभी प्रकार जो सद्गुणों से दूर हो गया और पाप पूर्ण कार्य में युक्त रहा। जब मर गया तो यमदूत आकर उसको ले रहे थे, लेने के समय तो अपना पुत्र नारायण के प्रति आसक्त होने के कारण और नजदीक को खेल रहा था तो विवश होकर के नारायण को फुकारा, क्योंकि उसका मन में छोटा सा बेटा हमेशा ही भरा रहता था। तो उसको जब पुकारता है भगवान नारायण का नाम लेकर के, तो वो भगवान का याद नहीं किया था, बेटा का नाम बोला था, लेकिन भगवान की नाम कभी अपेक्षा नहीं करता है, कौन कर रहा है और कब कर रहा है कैसे कर रहा है, इसका जमदूतों ये विष्णु दूतों में बाद में उत्तर कहते हैं। सांकेत्य परिहास्य स्तोव हेलनम एववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष पापहरम विदुः। कोई संकेत से भी और परिहास्य, संकेत मतलब अरे वो लोग हरे कृष्ण भक्त गए उधर, कोई बोल दिया, और परिहास्य कोई दूसरे है जो लोग हरे कृष्ण वाले को पसंद नहीं करते हैं तो वो परिहास करके हरे कृष्णा है उनके को जैसे दम्मा रे दम्मा ऐसा बोल रहे थे। तो परिहास में भी अगर भगवान का नाम बोले, संकेत्य परिहास या स्तोव, और कोई स्तुति में भगवान के नाम बोले, और कोई नेग्लेक्टफुली बोले, हेय ज्ञान से बोल रहा है, तो संकेत्य परिहास या स्तोव हेलना में बाबा, अगर वैकुंठ भगवान नारायण की अगर कोई नाम ले रहा है भगवान कृष्ण की नाम, तो उसका अनेक अनेक जन्म की पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। ये विष्णु दूत ने बताए हैं, नेक्स्ट ये अध्याय में आएगा। तो ये उसका भगवान की नाम कभी अपेक्षा नहीं करता, जैसा दवाई कभी अपेक्षा नहीं करता है कि ये व्यक्ति का ये मेरा कंपोजिशन मालूम है या नहीं, तो फार्मासिस्ट ही इलाज हो सकता है, दूसरे लोग नहीं, दवाई खाया मतलब इलाज होना ही है। ऐसे भगवान की नाम कभी अपेक्षा नहीं करता है व्यक्ति विशेष और उसका स्थिति को, अगर वो लिया तो उसको फल मिलेगा ही। तो तुरंत ही विवश होकर के वो भगवान नाम पुकारा है, तो तभी चारों विष्णु दूत आ जाते हैं। और तीनों जमदूत आए थे क्योंकि ये काय मन और वाक्य तीन, काय मन वाक्य में तीनों में ही पाप काम किया है, इसलिए तीन यमदूत आए। और भगवान का नाम नारायण संस्कृत में अगर बोलेंगे तो चार शब्द है, तो चार विष्णु दूत है। और विष्णु तो तुरंत मना करते हैं, नहीं छोड़ दो उनको। लेकिन ये लोग अपना ज्ञान से, अपना अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि इनको लेना ही है, जय क्योंकि पाप काम किया है। तभी विष्णुदूत पूछते हैं, विष्णुदूत जब उनको रोकने के लिए बोलते हैं तो जमदूतों ने उनको कहते हैं कि आप लोग क्यों हमको मना कर रहे हैं। और इन लोगों का भगवान की जैसे सुंदर दिव्य स्वरूप है, विष्णुदूतों का भी ऐसे सुंदर स्वरूप है। तो ये सुंदर स्वरूप जब देखते हैं तो वो लोग वास्तव में आकर्षित होते हैं उन लोगों के प्रति। और पूछते हैं आप लोग देवता है कि नर है या और कहीं भगवान का भक्त है, और हम लोगों को क्यों ये मना कर रहे हैं। तो जमराज का अगेंस्ट में अभी तक कोई गया नहीं है, आप कैसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, अरे ये तो पापी है। और हम लोग जमराज का दूत है जब बोले तो तभी विष्णु दूतों ने पूछते हैं कि अगर आप लोग यमराज की दूत हैं तो धर्म की संज्ञा बताइए, किसको दंड देना है और किसको नहीं। तभी अजामिल का इतिहास बताते हैं। पहले तो बताते हैं किसको दंड देना है, किसको दंड नहीं देना है। और इसे उनकी व्याख्या के हिसाब से तो सभी लोग तीन गुणों में बंधे रहते हैं, और वेद की जो शिक्षा है तीन गुणों में ही शिक्षा है। तो अच्छा बुरा करेगा ही, तो अच्छा करेगा भी उसको उपभोग मिलेगा, बुरा करेगा तो दंड मिलेगा। सही प्रायश्चित नहीं हुआ तो जमराज की दूध है ही, तो सभी लोगों को ऐसे ही जमराज की दूध अपेक्षा किए हैं उनके हिसाब जो व्याख्या किए। और बाद में अयामिल का उपाख्यान कहते हैं। अयामिल ये बहुत सुगुण संपन्न ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या की संगति के कारण दुश्चरित हो गया और सभी प्रकार पाप किया है और उसका सही प्रायश्चित नहीं किया है, इसी के कारण हम लोग उसको दंड देने लेने जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं और जमराज के पास लेंगे, और सही प्रायश्चित जब हो जाएगा तो ये फिर सुधर जाएगा, उसका कल्याण होगा। तभी विष्णु दूतों ने कहते हैं कि अगर नहीं, विष्णु दूतों ने आश्चर्य होकर कहते हैं और बहुत दुखी होकर के कहते हैं, देखो जो लोग धर्मी धर्म जिन लोगों के द्वारा आचरण होना है, और जो शासक है राजा है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है जिसको, लेकिन वही व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति जो कि हमेशा उसके ऊपर विश्वास किया है और उनकी सुरक्षा में अपना जीवन बिता रहा है, ऐसे व्यक्ति निरपराध व्यक्ति को दंड दे रहे हैं। अगर धर्म की जो प्रतिनिधि है अगर वो ऐसे कार्य करे तो आम जनता जो प्रजा किसका शरण जाएगा। तो ये विष्णु दूतों की बात है। ऐसे तो और दो तीन श्लोक भी बताए हैं, समय नहीं है तो ये श्लोक को आ गया। तो मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि विष्णु दूतों के भाव यही है, धर्म की पक्ष लेकर जो राजा जनताओं को, आम जनताओं को, प्रजा को सुंदर से सुरक्षा देना है, वो अगर उसको कोई भी दोष नहीं होते हुए भी अगर उसको दंड दे रहा है तो वो व्यक्ति और किसका शरण में जाएगा। तो वास्तव में यही दुखदायी स्थिति है। और प्रभुपाद ये श्लोक की अर्थ में और बताए विशेष रूप में कि कलियुग का स्थिति अभी जो हुआ है वास्तव में शोचनीय है। और ये तो कलियुग का सिम्टम ही भगवान ऐसा व्यवस्था किए हैं तो कौन उसको टाल सकता है। भागवतम में जैसा उल्लेख किया गया है कि दस्यु प्रायसु राजेशु, राजा लोग सब दस्यु जैसा हो जाएंगे तो प्रजा को लूटेंगे और वो प्रजा लोग गिरी कानन चले जाएंगे। उन लोगों को टैक्स देने के लिए नहीं होगा, अपने पास खाने के लिए नहीं होगा तो टैक्स कैसे देंगे, तो क्या करेंगे? ऐसे अत्याचार होने के कारण वो सब घर द्वार संबंधी स्वजन सब को छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे। ये बात भी वर्णन है भागवतम। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी का स्थिति प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि अभी राजाएं जैसे भारत की स्थिति जो हिंदू और मुसलमान का विभाजन किए वो राजा लोग नहीं किए, जो अंग्रेज वो शासन कर रहे थे वही लोग ही विभाजन किए और दोनों में कलह किए, झगड़ा उत्पन्न किए, नहीं तो वो लोग शांति में रह रहे थे और एक दूसरों को मारा मारी चला। पहले कभी भेद नहीं चलता था दोनों में, आराम से चलते थे, प्रभुपाद वही को उल्लेख कर रहे। और भागवतम पहला स्कंद का कलियुग का सिम्टम के बारे में बता रहे हैं कि प्रायेण अल्पाउष सभ्य कलाश्मिन युगे जना मंदस मंद मत मंद भाग्य ही अपद्रुता। तो ये हम लोगों का स्थिति है कि आयु अल्प है, अल्पायुष कलाश्मिन युगे जना मंदस मंद मतयो और आलसी है, राजा के द्वारा कंडेम्ड है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भी है, भाग्य भी साथ देने वाला नहीं है और राजाओं के द्वारा हमेशा उपद्रव करने जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो ऐसे अवस्था में हम लोगों के लिए कल्याण कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर पहले श्लोकों में श्री प्रभुपाद बताए हैं कि एक ही उपाय है जो कि ये कृष्ण भावना मृत का प्रचार। ज्यादा ज्यादा अगर ये कृष्ण भावना मृत का प्रचार होगा, भगवान की संदेश अगर लोगों के पास पहुंचेगा तो तभी लोगों को शांति मिल सकता है, नहीं तो नहीं। और कलि युग में एक ही नहीं, हजारों दोषों हैं, जैसे कि अभी बताए कि सुरक्षित रहता है प्रजाओं राजाओं के द्वारा और वो अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि राजा मुझे अच्छा से सुरक्षा देगा। लेकिन कलियुग का ऐसा लक्षण है, देखिए व्यक्ति जो मनुष्य है वो पशु से भी गुजरा है, वो वर्णाश्रम की बात तो छोड़िए, पशु भी अपना शरीर में गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको बहुत सुंदर से सुरक्षा देता है। लेकिन जिस मनुष्य गर्भ में स्थित अपना पुत्र को अगर मार रहा है, वो भी जानबूझकर मार रहा है, तो क्या पशु से श्रेष्ठ है या पशु के बराबर है? वो तो पशु से भी गुजरा हुआ है। ये कलियुग का लक्षण ना, ऐसा कभी हुआ भी नहीं था, होगा भी नहीं, ये कलियुग में ही ऐसा हो सकता है। जो बच्चा सुरक्षित रहता है माँ की गर्भ में, वही जगह में माँ ही चाहती है कि वो मर जाए। तो ये सभी प्रकार कलियुग की जो दोष है ये समुद्र की जैसा है और ये सभी प्रकार दोषों से उद्धार होने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय ये हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार ही आवश्यक है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद देवस्य मुक्त संग परम रजेत। अगर भगवान का नाम संकीर्तन प्रचार होगा, सभी जनता उसको ग्रहण करेंगे, अगर कम से कम जो जनता ग्रहण करेंगे ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, उनका जीवन सुखमय होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोकों में तो यही ही बात बताते हैं कि ड्यूटी ये भक्तों का कर्तव्य कि ये आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा प्रसार प्रसार करें, तभी जनता के कल्याण हो सकता है, और दूसरा कुछ भी उपाय है नहीं। तो ये अभी माराथन भी आ रहा है, तो श्रील प्रभुपाद को खुश करने के लिए और सभी जनताओं के कल्याण के लिए ज्यादा ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे। तो स्वयं भगवान तो कहते हैं कि वही व्यक्ति से मेरा प्रिय कोई था नहीं और होगा भी नहीं जो मेरा ये संदेश को मेरा भक्तों के पास पहुंचाता है। तो इसमें सभी खुश हैं, तो इसलिए हम सब मिलकर जैसे ये माराथन भी अवसर में ज्यादा ज्यादा श्रील प्रभुपाद को खुश करें, कृष्ण भावनामृत ग्रंथ को वितरण करके। अभी तो समय भी बहुत हो गया है, मैं बंद करता हूँ श्रीमद् भागवतम का चर्चा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की।